हरे कृष्ण। तो आज की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं सबसे पहले अपने आप को बहुत आभारी मानता हूं कि मुझे हमारी इस गुरु परंपरा के माध्यम से आज आपके समक्ष, आप लोगों के समक्ष यहां बैठकर कुछ पढ़ने का मौका मिला है। इसके लिए तो मैं अयोग्य व्यक्ति हूं, लेकिन आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि हमारा जीवन जो है इस प्रकार भगवान की कथा कीर्तन में व्यतीत हो। और उसके बाद मैं अपने गुरुदेव श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और श्रील प्रभुपाद, समस्त गुरु परंपरा और हमारे इष्ट देव श्री श्री आधार राधिका रमन कृष्ण बलराम, निताय गौर सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी और साथ में हमारे शिक्षा गुरु, इनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि इनके चरणों में आशीर्वाद की कामना करता हूं कि मैं ठीक चेतना से श्रील प्रभुपाद गुरु और गौरव के लिए मैं कुछ कह सकूं और मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। तो आप जानते हैं कि इस समय जो हमारे मंदिर में चैतन्य चरितामृत की चर्चा चल रही है, पीछे लगातार कुछ दिनों से बिमला प्रसाद प्रभु इसके पर कथा लेते थे, तो आज भी हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। और तो बोर्ड पे श्लोक लिखा हुआ है, तो आप लोग प्यार लिखा हुआ आप इसको हमारे पीछे बोलिए। हर दिन आज्ञा मागी चाली ल ब्राह्मण, तार पाछे पाछे गोपाल करिल गमन। आर दिन आज्ञा मागी चाली ल ब्राह्मण, तार पाछे पाछे गोपाल करिल गमन। आर दिन आज्ञा मागी चाली ल ब्राह्मण, तार पाछे पाछे गोपाल करिल गमन। तो अनुवाद बोलिए, अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अगले दिन बोलिए, ब्राह्मणों ने गोपाल से आज्ञा मांगी और वह अपने देश के लिए चल पड़ा, गोपाल भी उनके पीछे हो लिए। तो जैसे हम जानते हैं कि इस समय जो हमारा प्रसंग चल रहा है, ये साक्षी गोपाल जी की कथा चल रहा है। साक्षी गोपाल जी की कथा श्री नित्यानंद प्भु चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर बालेश्वर आए, ओडिशा में बालासुर है, बालासुर हिंदी में बालासुर बोलते हैं, तो वहां से फिर खीरचोरा गोपीनाथ दर्शन करके वहां पे माधवेंद्रपुर जी कथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को बताया। और उसके बाद साक्षी गोपाल पहुंचे, तो साक्षी गोपाल में अभी जहां पे साक्षी गोपाल जी का मंदिर है, उसी मंदिर की घटना है कि वहां पे नित्यानंद प्रभु इस प्रसंग को बता रहे, साक्षी गोपाल जी कथा बता रहे। तो अभी कुछ आगे के प्रायरों में भी साक्षी गोपाल जी कथा आती है, श्री श्री राधा राधिकारमण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री निताय गौर सुंदर की, गौर प्रेमानंदी। तो आगे भी कथा आती है, तो हम जो इसको दो भागों में लिए, हमारा ये प्रयास था कि बताने की कि साक्षी गोपाल जी का इस भूलोक में कैसे प्रादुर्भाव हुआ, किस कारण से साक्षी गोपाल का जो विग्रह है इस धराधाम में आए। लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे चल रही थी कि वो चीज अभी बता नहीं जा सकते, नहीं बता सकते। वो अगली सोमवार को जब कथा होगी तो हिज ग्रेस कदम बिहार पर मौका दे कि अगला चैतन्य चैतन्य आप भी लो, तो उसमें साक्षी गोपाल जी के विषय में डिटेल बताएंगे। और वहां डीटीस का भी कुछ लीला है तो वो भी बताएंगे बाद में। तो इस बार हम लोग कुछ कथाओं में जाते हैं। तो जैसा हम सब जानते हैं कि साक्षी गोपाल जी कथा नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं, और इस कथा को जो है इस प्रकार कथा चल रही है कि जो दो दक्षिण भारत के दो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा में गए थे तो अंत में वे वृंदावन पहुंचे। तो जो वृद्ध ब्राह्मण था वो युवा ब्राह्मण के सेवा से बड़ा प्रसन्न होकर तो उन्होंने साक्षी गोपाल जी के सामने प्रण लिया कि मैं अपनी जो पुत्री की विवाह जो है युवा ब्राह्मण से करवाऊंगा। तो ये बात जब यात्रा समाप्ति के बाद जब घर पहुंचे तो वो वृद्ध ब्राह्मण ने अपने बेटे को, पत्नी को, बेटी को बताया कि मैं इस प्रकार जो है मैं एक ब्राह्मण को कन्यादान देने का प्रण वचन दे के आया हूं और मुझे अपनी मेरी पुत्री का विवाह जो है उस ब्राह्मण से करवाना है। तो इस पर उनके घर वालों ने सहमत नहीं दिए, कोई भी राजी नहीं हुए। तो उनका जो बड़ा उनका जो लड़का था उस ब्राह्मण का, तो उसने बोला कि पिताजी इस गरीब ब्राह्मण से तो हम अपनी बहन का शादी नहीं करा सकते हैं और आप झूठ बोलने में भी डरते हैं, तो आप झूठ मत बोलिए, आप ये बोल दीजिए कि मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है और बाकी चीजें मैं देख लूंगा। तो इस प्रसंग को बिमला प्रसाद वो पिछली बार बता दिए थे तो वो 75 श्लोक तक ले लिए थे, उसका आगे के श्लोकों को हम लेंगे। तो आप लोग सुनिए इस प्रकार जो आगे कथा चल रही है। तो फिर जब युवा ब्राह्मण घर पे पहुंचा तो वहां पे वो जो ब्राह्मण का पुत्र ने मना किया, उसके ऊपर क्रोधित हुए, मारने के लिए दौड़ा। तो फिर युवा ब्राह्मण जो है उसको वो जो है उस गांव में पंचायत बुलाकर और सबसे पूछा गया कि सबसे सबके सामने कहा गया कि ये जो ब्राह्मण है अपने पुत्री को देने का मुझे वादा किया है, अब ये मुकर रहा है, आप लोग इसका निर्णय दीजिए। तो वे अपने जो ब्राह्मण का युवा ब्राह्मण का जो बेटा था तो वो जो अपने बात पटुता के कारण उसकी बात कुछ भी रहा नहीं, कुछ भी उसके बात को रखा नहीं। और तो तब इसका क्या प्रमाण है कि युवा ब्राह्मण जो है युवा ब्राह्मण को पुत्री देने का वचन दिया, ऐसा क्या प्रमाण है? तो युवा ब्राह्मण ने कहा हाँ, वृंदावन में गोपाल जी है, उनके सामने प्रण लिए थे, भगवान के सामने प्रण लिए थे, तो अगर आप कहो तो मैं गोपाल को बुला के आपके सामने ये मैं सत्य करवाऊंगा कि उन्होंने मेरे से प्रण लिया था। तो इस बात को सबने मान लिया, ठीक है। तो उसी 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 प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे हम। यही वाक्य साक्षी मोरो अच्छे महाजन आर वाक्य सत्य करी माने त्रिभुवन। तो युवा ब्राह्मण कह रहा कि मेरा वाक्य को, इस वाक्य को जो है एक महाजन के सामने किया गया। वो महाजन कौन है? भगवान कृष्ण है। और ये जो तीनों भुवनों के स्वामी हैं उनके सामने वचन दिया है, तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। यद्यपि तरुण ब्राह्मण ने अपने कुलहीन तथा अशिक्षित व्यक्ति बतलाया, किंतु फिर भी उसमें एक गुण था, वह यह कि वह भगवान के सर्वोच्च अधिकारी समझता था। उसने भगवान कृष्ण के शब्दों को बिना हिचके स्वीकार कर लिया था और उसे भगवान पर दृढ़ विश्वास थी। अन्य महाभाग प्रहलाद महाराज के अनुसार ऐसे कटुता तथा श्रद्धालु भगवत भक्तों को परम विद्वान मानना चाहिए। जिस शुद्ध भक्त को भगवान के शब्द में दृढ़ आस्था है, उसे ही संसार का सबसे बड़ा विद्वान, कुलीन तथा धनी मानना चाहिए। तन मयो धिन मुतमम। ऐसे भक्तों में सारे देवी गुण स्वतः पाए जाते हैं। हम लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार कार्य में भगवान को दासानुदास के रूप में, भगवान कृष्ण तथा उनके शिष्य परंपरा के शब्द में पूर्ण विश्वास रखते हैं। इस तरह हम कृष्ण के शब्दों को सारे विश्व में भेंट करते हैं। हम ना तो धनी है, ना ही अधिक विद्वान है और ना कुलीन है, फिर भी इस आंदोलन का स्वागत होता है और यह सारे विश्व में बड़े ही सुगमता पूर्वक फैल रहा है। यद्यपि हम अत्यंत निर्धन है और हमारी पास आय का कोई साधन नहीं है, फिर भी जब भी हमें धन की आवश्यकता होती है, कृष्ण हमें प्रदान करते हैं। जब हम मनुष्यों की आवश्यकता होती है जब हमें मनुष्यों की आवश्यकता होती है तो वे मनुष्य होते हैं, तो वे मनुष्य देते हैं। तो इसीलिए भगवद गीता में कहा गया है, यम लब्धे चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तत। वास्तव में यदि हम भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाए तो फिर हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। हम निश्चित ही उन वस्तुओं की चाह नहीं रह जाती, संसारी व्यक्ति संपत्ति मानते हैं। आगे, तबे बड़ विप्र कहे ऐ सत्य कथा, गोपालेर यदि साखी दिन अपने आसी यथा। तो बड़ा विप्र ने कहा, हाँ ठीक बात है, अगर गोपाल जी यहां पर आकर साक्षी देते हैं तो इसकी बात को सत्य माना जाना चाहिए। तबे कन्या दिबो आमी जानी हो निश्चय, तार पुत्र के हो एई भालो बात हो। तो अगर गोपाल जी आकर यहां साक्षी देते हैं तो मैं अपनी पुत्री का विवाह इनसे करवा दूंगा। तो इतने कहने पर उसका बेटा ने कहा, हाँ ठीक है, ये बात ठीक है। तात्पर्य छोटा सा है, सारे जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित भगवान कृष्ण जन जन की इच्छा जानना तथा प्रार्थना को जानने वाले हैं। भले ही ये सारे बातें परस्पर विरोध मूलक लगे, किंतु भगवान को ऐसी स्थिति लानी होती है कि हर कोई प्रसन्न रहे। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है वृद्ध ब्राह्मण तथा तरुण ब्राह्मण के बीच हुआ विवाह का समझौता। वृद्ध ब्राह्मण सचमुच ही उस तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या देना चाहता था, किंतु उसका पुत्र था, उसके संबंधी उसमें बाधक बन रहे थे। वृद्ध ब्राह्मण ने विचार किया कि इस स्थिति से ऊपर उबर कर उस तरुण ब्राह्मण को किस प्रकार कन्यादान किया जाए, किंतु उसका पुत्र नास्तिक था, अत्यंत चालाक व्यक्ति था और वह इस विवाह को रोकना चाहता था। पिता तथा पुत्र परस्पर विरोधी ढंग से सोच रहे थे कि कृष्ण ने ऐसी स्थिति ला दी कि दोनों उस पर राजी हो गए कि यदि गोपाल विग्रह आकर साक्षी दे तो तरुण ब्राह्मण को कन्यादान दी जाएगी। उसके आगे, बड़ विप्र मने कृष्ण बड़ दयामय, अवश्य मोर वाक्य ताहा रखिबे प्रमाण। तो बड़ा बड़ा वृद्ध ब्राह्मण ये सोच रहा है कि वास्तव में कृष्ण बड़े दयावान व्यक्ति है और वो मेरी वाक्यों को अवश्य रखेंगे। मैं यहां तो पुत्र के प्रभाव में आकर मैं झूठ बोलने लगा, लेकिन कृष्ण बड़ा दयावान व्यक्ति है, दयामय है, वो मेरी बातों को अवश्य रखेंगे, वो अवश्य गवाह देने के लिए आएंगे। वृद्ध ब्राह्मण को पूरा विश्वास था। पुत्र रमने प्रतिमाना करीब साक्षी दीते ए बुद्धे दुई जन होइला सम्मते। तो नास्तिक पुत्र ने सोचा गोपाल के लिए यह संभव नहीं है कि आकर साक्षी दे। यह सोच करके पिता का पुत्र दोनों राजी हो गए, है ना। छोटा विप्र बोले यही पत्र करह लिखन पुनः ये ने नाही चले ये सब वचन। तब छोटा विप्र ने कहा कि आप एक पत्र में लिख दीजिए, फिर बाद में जो है आप मुकर जाएंगे, तो इस बात को आप लिख लीजिए। इस बार छोटा विप्र ने से कहा। तबे सबे लोके मिली पत्र तो लिखिल दुहार सम्मति लया मध्यस्थे रखिल। तब सभी लोगों के बीच में उसने पत्र लिखकर और सबके बीच में रख दिया। जैसे पंचायत होती है तो पंचायत के बीच में जो है पत्र को लिख दिया। अब सबके सामने स्पष्ट हो गया कि अब जो अगर गोपाल जी आएंगे तो इस ब्राह्मण की पुत्री का विवाह इस ब्राह्मण से किया जाएगा। तबे तो छोट विप्र कहे सुन सर्वजन एई विप्र सत्य वाक्य धर्म परायण। छोटा विप्र ने कहा सभी लोगों से कि आप सब लोग सुने यहां पर कि ये जो विप्र का जो वाक्य है ये जो है सत्य है, धर्म परायण। सौभाक्य छाड़ीते यहा तो नाही किछु मन स्वजन मृत्यु भय के हो असत कहे असत्य वचन। ये अपने वाक्य को छोड़ना नहीं चाहता लेकिन अपने परिवार की मृत्यु के भय से वो जो है ये असत्य वचन बोल रहा है। अपने उनके परिवार वालों ने कहा कि अगर आप यदि उस ब्राह्मण से शादी करवाओगे गरीब ब्राह्मण से तो हम जहर खा जाएंगे। इस भय से जो बूढ़ा ब्राह्मण है वो जो है असत्य वचन कहा। यहार पुण्य कृष्ण अति साक्षी बोलाइब तबे यही विप्रर सत्य प्रतिज्ञा रखिब। तो इसके इस ब्राह्मण को ब्राह्मण झूठ बोलने के कारण उसको पाप लगेगा, उसको पाप लग जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण जो है कृष्ण को बुलाऊंगा और इसकी बात को मैं सच करवाऊंगा। बूढ़ा ब्राह्मण तो बोला नहीं, इसने बोला कि मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है मैंने क्या कहा था। तो कह रहे ये जो है अपने पुत्र के बस में आकर असत्य वचन बोल रहा है उससे इस ब्राह्मण को पाप लग जाएगा, लेकिन मैं साक्षी गोपाल को बुलाकर प्रतिज्ञा करवाऊंगा। भगवान इसके ऊपर कृपा करेंगे, यहां पर आके कृपा करेंगे इसके ऊपर, तो इसकी बात की जो रक्षा होगी। ब्राह्मण को झूठ नहीं बोलना चाहिए, जैसे ब्राह्मण का गुण है झूठ ना बोले। सत्य शौच क्षमा दया शांति आर्जन ए वचन, है ना। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए ब्राह्मण को। तो लेकिन ये जो अपने पुत्र के बस में आके कह रहा है तो उससे जो है उसकी रक्षा होगी, ब्राह्मण की वाक्यों को रक्षा होगी। पहले के समय में हर कोई यही प्रयास करता था कि कभी भी कोई भी भक्त होते थे, वैष्णव होते थे, ब्राह्मण होते थे, झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप माना जाता है, सबसे बड़ा पाप है। झूठ बोलने वालों के एक अलग से नरक है, भागवतम में पांचवां स्कंध में लिखा अलग से नरक है जो व्यक्ति झूठ बोलता है। तो हर कोई झूठ बोलने में डरते थे, विशेष करके आज कोई ऋषि मुनि होते थे और ब्राह्मण होते थे तो ये लोग तो डरते थे। इस प्रकार से कथा आती है। जब भगवान को ऐसे प्रसंग आती है, जब दधीचि ऋषि से हड्डी मांगने के लिए गए थे, इंद्र गए थे। एक और बात शुरू आती है कि भगवान जो है, भगवान को एक ऋषि ने श्राप दिया था। किस ऋषि ने श्राप दिया था? तो उस श्राप के कारण जो है, भगवान को श्राप देने के कारण उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। कोई व्यक्ति भगवान को श्राप देता है, लेकिन फिर व्यक्ति तपस्या किया, उस ऋषि ने तपस्या किया और उसने भगवान प्रकट हुए। फिर भगवान को कहा, भगवान मैंने जो आपको श्राप दिया हूं, इस श्राप का आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि अगर हम कुछ बोल देते हैं तो अगर वो असत्य होती है तो इससे व्यक्ति की जो है ब्राह्मण का तेज समाप्त हो जाता है, ऋषि मुनियों का तेज समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर उसकी बात रहता है तो उसका जो है तेज समाप्त नहीं होता। तो इस कारण से कोई भी व्यक्ति झूठ कुछ बोल देते हैं, फिर भगवान को उनकी बात को सत्य करना पड़ता था। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो बड़ा विप्र का बात को भगवान सत्य करने के लिए यहाँ पर आएंगे। एते सुनि नास्तिक लोक उपहास करे, केहो बोले ईश्वर दयालु आसिते हो पारे। तो कुछ नास्तिक लोगों ने इस बात को उपहास करने लगे। हा, कौन इसकी बात को सत्य करने के लिए क्या भगवान आएंगे? कुछ परिहास कर रहे थे। हाँ, हो सकता है आ सकते हैं, क्योंकि भगवान बहुत दयालु है, लेकिन लोग मजाक कर रहे थे। तो वैसे ही छोटो विप्र गेलो वृंदावन, दंडवत करी कहे सब विवरण। तब छोटा विप्र वृंदावन में जाकर उस ब्राह्मण को कहा, वृंदावन जाके भगवान को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और उनको सारी घटना बता दिए। ब्राह्मण देव तुमी
बड़ दयामय, दुई विप्रर धर्म रख एही होया सदय।
छोटा विप्र ने कहा, हे ब्राह्मण देव, हे भगवान, कृपा करके आप बड़े दयालु हैं और आप हम दोनों ब्राह्मणों का धर्म की रक्षा कीजिए। गोपाल जी से कहने लगा,
कन्या पाबो मोरे मने इहा नाही सुख, ब्राह्मण र प्रतिज्ञा याए एही बड़ दुख।
मेरे मन में उसकी पुत्री को पाने का मुझे कोई सुख नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कि उसका पुत्री प्राप्त करने, मुझे कोई इच्छा नहीं है। लेकिन उस ब्राह्मण जो है, उसकी जो प्रतिज्ञा भंग हो रही है, उससे मुझे बड़ा दुख हो रहा है। छोटा ब्राह्मण ने कहा, तात्पर्य उस तरुण ब्राह्मण की मसा विवाह द्वारा वृद्ध ब्राह्मण की कन्या प्राप्त करके भौतिक सुख भोग और इंद्र तृप्ति नहीं थी। वो तरुण ब्राह्मण भगवान से साक्षी बनने के लिए कहने के उद्देश्य से वृंदावन नहीं गया था। उसकी एकमात्र चिंता यही थी कि उस ब्राह्मण ने किस बात के लिए वचन दिया है और यदि वो मामले में गोपाल साक्षी नहीं बनते तो उस वृद्ध ब्राह्मण को आध्यात्मिक कलंक लगेगा। इसीलिए वो तरुण ब्राह्मण विग्रह का संरक्षण और असहाय चाह रहा था। इस तरह वो ब्राह्मण शुद्ध वैष्णव था, तो उसमें इंद्र तृप्ति की इच्छा कोई इच्छा नहीं थी। वो तो भगवान तथा उस वैष्णव भगवत भक्त वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करना चाहता था।
एते जानी तुमी साक्षी दिह दयामय, जानी साक्षी नाई दियो तारो पाप होय।
एते जानी तुमी साक्षी देहो दयामय, हे भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं, कृपा करके आप साक्षी देने के लिए चलिए।
जानी साक्षी नहीं दियो तारो पाप हो। अगर आप सब कुछ जानकर आप अगर साक्षी नहीं देते तो उस ब्राह्मण को पाप लगेगा। भक्त तथा भगवान की आपसी वार्ता अत्यंत सरल होता है। तरुण ब्राह्मण ने भगवान से कहा, आप हर बात को जानने वाले हैं, किंतु यदि आप साक्षी नहीं बनेंगे तो आपको पाप लगेगा। अच्छा अच्छा ना, तरुण ब्राह्मण कह रहा कि आपको साक्षी हमने बनाया हुआ था, अगर आप साक्षी नहीं बनेंगे तो भगवान आपको पाप लगेगा। बड़ा सरल ब्राह्मण था। प्रभुपाद लिखते, भक्त तथा भगवान के आपसी बर्ताव अत्यंत सरल होता है। तरुण ब्राह्मण ने भगवान से कहा, आप हर बात को जानने वाले हैं, किंतु यदि आप साक्षी नहीं बनेंगे तो आपको पाप लगेगा, किंतु ऐसे पाप कर्मों में भगवान को फंसने की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि शुद्ध भक्त भगवान के विषय में सब कुछ जानना चाहता था किंतु वो उससे उसी तरह बात कर रहा था जैसे कोई सामान्य मनुष्य से बात करता हो। तो तरुण ब्राह्मण जो है भगवान के विग्रह से बात कर रहा था। जैसे हमने सुना कि भगवान आप गवाह देने के लिए जाइए, अगर आप गवाह नहीं देंगे तो आपको पाप लगेगा। तो ये जो है वो भगवान के विग्रह से बात कर रहे थे। तो प्रभुपाद कह रहे कि जो भक्तों को इस प्रकार से विग्रहों से अपनी मन की बात बताना चाहिए और जो है विग्रहों से बात करना चाहिए, तो विग्रह भी हमसे बात करना शुरू करते हैं। यद्यपि भगवान तथा उनके भक्तों के आपसी बर्ताव अत्यंत स्पष्ट तथा सरल होता है। भगवान और भक्तों के बीच का जो बर्ताव है अत्यंत सरल अस्पष्ट भी स्पष्ट और सरल होता है, किंतु औपचारिकता के तो रहता ही है। किंतु औपचारिकता तो रहता ही है, लेकिन भगवान से बात करें लेकिन ज्यादा जो है जो इसको जैसे कि ज्यादा जो है फेमिलियरिटी ना हो जाए भगवान के विग्रहों से। ज्यादा फेमिलिटी होने से फिर जो विग्रहों प्रति अपराध हो जाता है। जैसे अग्नि से, गुरु से और भगवान से ज्यादा दूर भी नहीं जाना चाहिए और ज्यादा निकट भी नहीं जाना चाहिए। ज्यादा निकट होने से फिर जो है भगवान के प्रति उनके प्रति अपराध हो जाता है। ये सारे बातें इसलिए होती है क्योंकि भगवान तथा भक्त के बीच में संबंध रहता है। कृष्ण कहे विप्र तुमी याहो स्वभवने सभा करी मोर तुमी करह स्मरणे। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने गांव चले जाओ और वहां पे सभा करो, सबको बुलाओ, पंचायती दोबारा बुलाओ, बुला के वहां पे आप मेरे को स्मरण करो। आविर्भाव हो या आमी ताहा साक्षी दिव तबे दुई विप्रर सत्य प्रतिज्ञा रखिव। तो जब आप मुझे स्मरण करोगे तो मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा और प्रकट होऊंगा, आपका साक्षी बनूंगा, तब जाके तुम दोनों का जो वचन है उसको मैं सत्य करवाऊंगा। तो आगे विप्र बोले, यदि हय चतुर्भुज मूर्ति तबु तुमार वाक्य कारु ना हब पीरति। छोटा ब्राह्मण ने कहा, भगवान अगर आप वहां पर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाएंगे तब जो है आपके वाक्य को आपकी जो आप जो भी बोलोगे आपको कोई मानेगा नहीं, आपकी बात कोई मानेगा नहीं, क्योंकि आप तो यहां दो भुज रूप में यहां पर है। और अगर आप समझो आपकी आपके अंदर भावना हो गई मैं स्मरण करूंगा, अगर आप चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा।
और फिर जो है ना सबको लगेगा कि आपकी बात ठीक नहीं है।
यही मूर्ति गया यदि यही श्री बदने साक्षी दियो यदि तबे परलोक सुने।
यदि आप स्वयं ही इस रूप में अगर आप हमारे साथ चलेंगे
तो अगर आप इसी रूप में हमारे साथ चलकर आप साक्षी देंगे तब सारा त्रिलोक में आपकी बात सुना जाएगा,
छोटा ब्राह्मण ने कहा। तो आगे आगे भगवान कहते हैं,
कृष्ण कहे प्रतिमा चाले कोथा कोथा ए ना सुनी विप्र बोले प्रतिमा होयो कहो के नो वाणी।
तो भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण तुमने कभी सुना है कि विग्रह चलते हुए तुमने कभी सुना है?
तो छोटा ब्राह्मण ने उसी प्रकार कहा,
मैंने कभी ये भी नहीं सुना कि कभी विग्रह को बात करते कभी सुना भी नहीं, और आप तो मेरे से बात कर रहे हो।
बोल सकता।
प्रतिमान है तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विप्रलागी कर तुम्हें अकार्य कारण।
छोटा ब्राह्मण भगवान के परम भक्त था और वो भक्ति के आवेश में आके, वास्तव में जिसके अंदर भक्ति का आवेश है, भक्ति है उसके हृदय में, वही व्यक्ति इन विग्रहों में भगवान की बुद्धि करेगा, विग्रहों को भगवान के रूप में देख सकता।
तो ब्राह्मण ने कहा, प्रतिमा नहे तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तुम मूर्ति नहीं हो, तुम नंद महाराज के पुत्र हो, ब्रजेंद्र नंदन हो। विप्र लागी करो तुम्हें अकार्य कारण, और आप मेरे लिए ऐसा काम कीजिए अभी तक जिसने काम नहीं किया हो, कभी भी ऐसे काम जिसने नहीं किया वो काम आप मेरे लिए कीजिए, भगवान से कह रहा है।
फिर गोपाल कहते हैं,
हसिया गोपाल कहे सुनो हो ब्राह्मण तुम्हारो पाछे पाछे आमे करीब गो मन।
भगवान हंसते हुए कह रहे, हे ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हारा पीछे पीछे चलूंगा। था प्रभुपाद तात्पर्य है, इसको जरा सुन लेते।
ये कथा में प्रभुपाद जी की तात्पर्यों को जरूर सुनना चाहिए।
हम कथा सुनते हैं कि अपनी शुद्धिकरण के लिए, हमारा मंदिर में जो व्यवस्था है कि प्रतिदिन गीता और चैतन्य चरितामृत और भागवतम में कथा होती है, इसका यही अर्थ है कि हम ध्यानपूर्वक तात्पर्य को सुने, शब्दों को सुने, इससे गुरु परंपरा की कृपा से हमें जो है हमारा शुद्धिकरण होती है ना। जैसे भागवतम में कहा गया है कि नष्ट प्राय स्व भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, भागवतम सुनने से हमारे अंदर जो अनर्थ दूर होती है। तो ये जो है तात्पर्य अनुवाद है, ये भी भागवत से अभिन्न है, और इसको तो इससे क्या कि हमारे अंदर शुद्धिकरण होती है। तात्पर्य,
भगवान कृष्ण तथा उस ब्राह्मण के बीच हुई वार्ता इसका प्रमाण है कि भगवान के अर्चा मूर्ति भौतिक नहीं है, क्योंकि जिन तत्व से मूर्ति बनी है वे भगवान के पृथक होकर भी भगवान की शक्ति के अंश है, जिसे कि भगवत गीता में कहा गया है, क्योंकि सारे तत्व भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और क्योंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, अतएव भगवान किसी भी तत्व में प्रकट हो सकते हैं।
यहां पे प्रभुपाद कह रहे कि ये जो भौतिक जगत है, जितने भी वस्तुएं सब भगवान की शक्ति में टिकी हुई है, तो उसी प्रकार तो भगवान अपनी शक्ति से कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। तो इस बात से प्रभुपाद कह रहे कि हमें जो अर्चा विग्रह में कभी भी भौतिक बुद्धि नहीं करना चाहिए, इसको भगवान की शक्ति के रूप में देखना चाहिए। और जब हम इसी विग्रह को जब भगवान के रूप में पूजते हैं, तो भगवान स्वयं हमसे बात करने लगते हैं, हमारा सेवा स्वीकार करने लगते हैं, हम उनको भोग अर्पण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और उनको हम श्रृंगार करते तो भगवान सब कुछ एक्सेप्ट करते। आप सबको इसका फीलिंग होगा ही होगा, है ना। हम ऐसे नहीं कि कोई ऐसे कोई पत्थर की पूजा कर रहे हैं, हम साक्षात भगवान की पूजा कर रहे हैं। जब लोग इसका प्रयास करते हैं, भक्ति योग में जुड़ते हैं, तब उनको लगता ही है कि ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश में से प्रकट होकर सर्वत्र प्रकाश तथा उष्मा वितरित करता है, उसी प्रकार कृष्ण अपने अचिंत्य शक्ति से किसी भी भौतिक तत्व से, चाहे वो पत्थर हो या काष्ठ अथवा सोना, अपने आदि रूप में प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि सारे भौतिक तत्व उनके शक्ति रूप होता है ना। तो भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान की ही शक्ति है। शास्त्र आग्रह करते हैं कि अर्चा विष्णु शिलधि, मंदिर में स्थापित अर्चा विग्रह अर्थात अर्चा मूर्ति को कभी पत्थर, काष्ठ या अन्य भौतिक तत्व नहीं मानना चाहिए। यह तरुण ब्राह्मण भक्ति में बड़ा चढ़ा होने के कारण जानता था कि यद्यपि गोपाल विग्रह पत्थर लगता है, किंतु वास्तव में पत्थर नहीं है, वो तो नंद महाराज का पुत्र साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। फलस्वरूप अर्चा विग्रह कृष्ण के आदि रूप की ही तरह कार्य कर सकता है। भगवान कृष्ण उस तरुण ब्राह्मण को ज्ञान की परीक्षा करने के निमित्त अर्चा विग्रह के विषय में बात कर रहे थे। दूसरे शब्द में, जिन लोगों ने कृष्ण विज्ञान, कृष्ण के नाम रूप गुण आदि को सलाह लिया समझ लिया है, वे ही विग्रहों से बात कर सकते हैं। किंतु सामान्य व्यक्ति के लिए अर्चा विग्रह पत्थर, काष्ठ या किसी अन्य पदार्थों से बना प्रतीत होगा। इसका उच्चतर अर्थ यह हुआ कि सारे भौतिक तत्व अंतगत्वा परमात्मा से उद्भूत होते हैं, वास्तव में कुछ भी भौतिक नहीं है। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञ होने के कारण कृष्ण अपने भक्तों से बिना किसी कठिनाई के विचार विनिमय कर सकते हैं। भगवत कृपा से भक्त भगवान के व्यवहार से भली भी परिचित होता है, वो साक्षात भगवान से बात कर सकता है। तो आगे साक्षी गोपाल जी कह रहे कि मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, उलटिया आमी तुमी ना करह दर्शन, आमी के देखिलो आमी करी बसे, आमा को देखिले आमी रही बसे ही स्थान। आप मेरे को उलटकर मत, पीछे आप उलटकर मत देखना। अगर आप उलटकर देखने देखोगे तो मैं वहीं खड़ा रह जाऊंगा। नुपुर ध्वनि मात्र आपन सुनिया, आमा नुपुर ध्वनि मात्र आमार सुनिया, सही शब्द आमार गमन प्रतीत करिया। आप जब आगे आगे चलते रहोगे तो मैं पीछे से आऊंगा और मेरी नुपुर की ध्वनिया, मेरी नुपुर बजते रहेगी, उसकी ध्वनि से आप समझ लेना कि मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूं। तो एक सर अन्न रांधी करी ह समर्पण, ता खाओ तुमार संगे करीब गमन। तो आप मुझे प्रतिदिन एक सेरा चावल बना के देना। सेरा होता है, जैसे किलो नहीं होता गांव में ना, नहीं वो एक लकड़ी का डिब्बा जैसे होता है, उस पे जो है चावल नाप के देते हैं, किसी व्यापारी वाला वो उस डिब्बे से नाप के देगा, और जब उसको वापस करना होता है उस डिब्बे से नाप के लेगा, तो उसको सेरा बोलते हैं। तो भगवान ने कहा आप मुझे रोज एक किलो ले लीजिए, एक किलो चावल प्रतिदिन आप बनाकर आप मुझे दीजिए, ता खाई तुम्हारे संगे करीब गमन, उसको मैं खाकर मैं तुम्हारे साथ चलता रहूंगा। और तो उसके बाद ये श्लोक आ रहा है, आरो दिनो आज्ञा मांगी चाली लो ब्राह्मण, तारो पाछे पाछे गोपाल करी लो गमन। तो अगला दिन फिर ब्राह्मण ने कहा ब्राह्मण राजी हो गया, ठीक बात है। फिर अगले दिन ब्राह्मण ने कहा भगवान, ब्राह्मण ने कहा भगवान चलिए, तो ब्राह्मण भी जाने लगा, उसके पीछे पीछे भगवान भी जाने लगे। तो भगवान उस ब्राह्मण के बातों को सिद्ध करने के लिए, तो गवाह देने के लिए भगवान जा रहे हैं। तो इस प्रकार चैतन्य चरितामृत जो है बहुत ही आस्वादनीय वस्तु है, तो बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। और इस पे जो है चैतन्य चरितामृत में जो लीला है, लीला ही सिद्धांत है। और इसमें हमारे भागवतम में तो सिद्धांत को कहा गया है, उनके श्लोकों में सिद्धांत भी भरी हुई है, लीलाओं के साथ सिद्धांत भरी हुए है। ले इसमें लीला में ही सिद्धांत है। हम चैतन्य चरितमृत पूरा पढ़िए पता लगता है कि चैतन्य महाप्रभु भी खास कोई इंस्ट्रक्शन दे नहीं रहे। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को अंत लीला में कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी लीला है। तो लीला के माध्यम से ही इसमें सिद्धांत प्राप्त होता है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रील व्यासदेव जी ने तो भागवतम लिखे है, उसमें सब भागवतम में संस्कृत में लिखे है। भागवतम भी पीने की वस्तु है, उसमें चबाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो नेक्टर है, लेकिन वो संस्कृत में है। लेकिन तब भी जो भक्त लोग हैं उसका आस्वादन करते हैं, रस लेते हैं। और मैं जो चैतन्य चैतन्य लिखा हूं ये तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत ही मैं संस्कृत श्लोक दिया हूं, बाकी तो मैं सरल भाषा में लिखा हूं, बंगाली में। तो इसमें कोई भक्तों को कठिनाई नहीं होना चाहिए इस चैतन्य चैतन्य का आस्वादन करने के लिए। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी भी कहा करते थे कि सब भक्तों को बंगाली सीखना चाहिए। तो जो व्यक्ति बंगाली सीख लेते जानते हैं उनके लिए चैतन्य चरितमृत में समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये प्रसंग होती है, और इसी से संबंधित कुछ कथाएं हैं, है ना। तो देखिए ये जो साक्षी गोपाल, जो पीछे जो है साक्षी गोपाल वृद्ध ब्राह्मण का बात को रखने के लिए उस गवाह देने के लिए आए, और चैतन्य महाप्रभु भी अभिन्न श्री कृष्ण है, ये भी श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है। तो कृष्ण भी जो अपने वाक्य को, उनकी भक्तों की वाक्यों को रखने के लिए जगन्नाथपुरी आए। तो उनके भक्त थे, उनकी माई थी सची माता। सची माता ने उनको कहा था कि बेटा तुम जो है यहां से तुम इस प्रसंग को जब पढ़ने से पता लगता है, तो थोड़ी सी श्लोक है, हम पढ़ लेंगे, प्रयार पढ़ लेंगे। और इसमें चैतन्य महाप्रभु जो है अपनी माँ के आदेश से जगन्नाथपुरी में ठहरने लगे। नहीं तो उससे पहले उनकी ये इच्छा थी, चैतन्य महाप्रभु की अंदरूनी इच्छा ये थी कि मैं संन्यास लेकर वृंदावन चले जाऊं, लेकिन माँ का आदेश से वे जो जगन्नाथपुरी में रुके। तो चैतन्य महाप्रभु भी अपने माता से बहुत प्रेम करते थे, संन्यास लेने के उपरांत भी उनका माँ से जो है बड़ा प्रेम था। इस कारण से माँ का आदेश का पालन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु वहां गए थे। तो थोड़ा सा समय लेंगे, 10-20 मिनट लेंगे। इसमें जो है चैतन्य महाप्रभु कटवा में संन्यास लेकर चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको थोड़ा सा भटका के उनको शांतिपुर ले आए, शांतिपुर में अद्वैत आचार्य घर पे। तो अद्वैत आचार्य के घर पे हमने पीछे प्रसंग सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको दोबारा हम स्मरण करते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु कथा सुनते हैं, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य होए, जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति को भक्ति प्राप्त होता है। तो बड़े से थोड़ा सा लीला है। तो वहां पे 10 दिन तक जो है भोजन लीला चलती रही नित्यानंद प्रभु का, अद्वैताचार्य का, श्री चैतन्य महाप्रभु का। और 10 दिन के उपरांत, 10 दिन के उपरांत जो है वहां पर आचार्य रत्न अर्थात चंद्रशेखर आचार्य जी श्री चैतन्य महाप्रभु के मौसे लगते हैं, यानी कि सच्ची माता का बहन का पति, तो मौसे लगते हैं। तो वो जो है सच्ची माता को लेकर आते हैं चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने के लिए। या इस प्रसंग में चैतन्य महाप्रभु का और सच्ची माता का कितनी भक्ति, प्रगाढ़ भक्ति जो है, कितना स्नेह देखा जाता। तो कह रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे, प्रभाते आचार्य रत्न दोलाए चढ़ाए भक्त गण संगे आइल सची माता लोयाम। तो सुबह का समय आचार्य रत्न चंद्रशेखर आचार्य जी सची माता को दोला पे चढ़ा के लाए। दोला होता है ना, जो एक लकड़ी का घर जैसे होता है, उसमें दो लकड़ियां होती है, उसमें पालकी चलेगा। तो उसको बंगाली में दोला बोलते हैं, उड़ीसा में इसको दोला बोलते हैं। तो उसमें बिठा कर सची माता को लेकर आए। भक्तों के साथ आचार्य रत्न जी वहां पर आए। न दिया न करे लोक स्त्री बालक वृद्ध सर्वलोक आइलो हेलो संघट समृद्ध। तो नदिया से नवदीप से जितने स्त्री बालक वृद्ध ये सभी लोग जो है चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए शांतिपुर पधारे। इस प्रसंग को यहाँ पे विस्तार से वर्णन नहीं है, लेकिन चैतन्य भागवत में बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया कि सभी लोगों के अंदर इतने उत्कंठा थी चैतन्य महाप्रभु को देखने का। सब लोग चैतन्य महाप्रभु से इतने आसक्त थे, इतने सुंदर उनका विग्रह था, इतना सुंदर स्वभाव चैतन्य महाप्रभु का था कि जो हर कोई उनसे प्रेम करता था, तो हर कोई उनको देखने के लिए आते थे। तो चैतन्य भागवत में बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है कि कैसे किस प्रकार से लोग आते थे। नदी में बाढ़ आया हुआ था तो कोई कोई तो नौका से पार कर रहे थे, कुछ लोग केले के पेड़ को पकड़ के उससे नाव नदी पार हो रहे थे, वो डूबता नहीं है, और कुछ लोग मटकी को उल्टा रखकर उसके ऊपर लेट जाते, तभी व्यक्ति डूबता नहीं है। तो इस प्रकार लोग पार हो रहे थे, ये सब चैतन्य महाप्रभु कृपा से हो रहा था। तो अगला दिन क्या हुआ, जिस दिन सच्ची माता पहुंच रही थी उस दिन चैतन्य महाप्रभु प्रातः कृत करी करे नाम संकीर्तन सच्ची माता लया आइल अद्वैत भवन। तो सुबह के समय चैतन्य महाप्रभु अपना प्रातः काल का कृत्य करने के बाद भगवान का नाम जप करने में बैठे हुए थे। तो सच्ची माता जो उस समय भक्तों के साथ जो है अद्वैत आचार्य घर पे पहुंचे। सची आगे पड़ीला प्रभु दंडवत होया कांदीते लागिलो सची कोले उठाया। तब माता सची को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने उनको दंडवत प्रणाम किए सची माता को। फिर सची माता ने उनको उठाकर रोने लगे, चैतन्य महाप्रभु रोने लगे। तब सची माता ने उनको उठाकर गोद में बिठाए। यहार दर्शन दुहे विभोल होइला केसन देखिया सची होइलो विकल। तो जब दोनों मिले, सच्ची माता और चैतन्य महाप्रभु मिले, तो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत रोने लगे। और सच्ची माता ने देखा कि निमाई के जो है सिर में बाल नहीं है, उन्होंने अपना मुंडन करवा दिया, संन्यास लेने के लिए मुंडन करवा दिया। तो इसको देखकर सच्ची माता को बहुत दुख लगा, बहुत रोने लगी।
অঙ্গে মুচ্ছি মুখ চুম্বি করে নিরক্ষণ দেখিতে ন পায়ে অশ্রু ভরিল নয়ন। তব সচী মাতা নে উনকে সারে অঙ্গো মে আপনে হাত কো সারে অঙ্গো অঙ্গো কো স্পর্শ কি আর উনকে মুখ কা চুম্বন কিয়া আর বহুত হি আচ্ছে ঢং সে নিমাই কো দেখি আর ইতনা দেখ রহি থি লেকিন উনকে আঁখ সে যো আঁসু বহতে যা রহা থা। কান্দিয়া কহে ন সচি বাছারে নিমাই বিশ্বরূপ সমনা করিব নিঠুরাই। তব সচি মাতা কেন লাগি হে নিমাই বেটা নিমাই তুম যো হে তুম তুম বি উস বিশ্বরূপ কি তরা কার্য করনে লগা তুমারা ভাই বিশ্বরূপ যো হে ও সন্ন্যাস লেকর চলা গয়া আর বড়ে বহুত হি নিষ্ঠুর ভাব সে মুঝে ত্যাগ দিয়া আর কবি ভি মেরে পাস আয়া নেহি। সন্ন্যাসী হই না পুন না দিল দর্শন তুমি তেছে কেল মোর হইব মরণ। বেটা আগর তুম উসি বিশ্বম্বর কি তরা হি আগর সন্ন্যাস লেকর আগর মেরে কো দর্শন নেই দোগে তো তুম যো তুম সমঝ লেনা কি মেরা নিশ্চিত হি মরণ হো জায়েগা। ফির চৈতন্য মহাপ্রভু যো হে রোনে লাগতে হ্যাঁ ইস বাত কো শুনকর। কান্দিয়া বোলে নে প্রভু শুনো মোর আই তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই। তো চৈতন্য মহাপ্রভু রোতে হুয়ে মাতা সচি সে কেতে হ্যাঁ হে মা তুমনে হি মুঝে শরীর প্রদান কিয়া হ্যাঁ আর মেরে 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 জীবন মে তুমারা এলাভা আর কই ভি নেহি হে তোমার পালিতে দেহ জন্ম তো তোমা হইতে কোটি জন্ম তোমার ঋণী না পারে শোধিতে। হে মা তুমনে হি ইস শরীর কো জন্ম দিয়া হে আর তুমনে হি ইসকো ইস শরীর কা পালন পোষণ কিয়া হে কো করোড়ো জন্ম কে জন্ম লেনে পর ভি মে তুমারা ঋণ সে মুক্ত নেই হো সকতা। জানিবা না জানি কেল যদাপি সন্ন্যাসী তথাপি তোমার কভু নহি বউদাসী। মেনে জানে অঞ্জানে মে সন্ন্যাস লে লিয়া আর হ্যাঁ মেনে জানে অঞ্জানে মে সন্ন্যাস লে লিয়া ফির ভি মা তুম যো হে দুঃখী মত হো না তুম দুঃখী মত হো না আর কবি ভি দুঃখী দুঃখ মত করনা তুমি ইহা কহ আমি তাহাতে রহিব তুমি এই আজ্ঞা কর সেই তো করিব। তুম আগর যাহা যো কহোগি মে ওই করুঙ্গা। চৈতন্য মহাপ্রভু মা সে কেতে মা আগর তুম যো ভি কহোগি মে ওই করুঙ্গা আর আগর তুম যো আজ্ঞা দোগে ও মে জরুর পালন করুঙ্গা। এতে বলি পুন পুন করে নমস্কার তুষ্ট হই আই কলে করে বার বার। তো ফির যো হে ইতনা বোল কর চৈতন্য মহাপ্রভু বার বার সচি মাতা কো প্রণাম করতে হে আর মাতা সচি যো হে বহুত সন্তুষ্ট হোকর উনকো বার বার যো হে আলিঙ্গন করতি হে। তবে আইল আচার্য গেল অভ্যন্তরে ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইল সত্বরে। তব যো হে তব অদ্বৈত আচার্য আকর সচি মাতা কো আপনে ঘর কে অন্দর লেকর গে আর ফির সবই উসকা চৈতন্য মহাপ্রভু সবই ভক্তো সে মিলে আর ফির উহাঁ পর ইয়ে হোতা হে ইস লীলা হোতি হে কি উহাঁ পে ফির ভক্তো কে সাথ চৈতন্য মহাপ্রভু দো মহিনা তক উহাঁ পে রুকতে হে আর প্রতিদিন হরিনাম সংকীর্তন হোতা হে আর সচি মাতা ভি সব ভক্তো কেতি হে কি দেখো নিমাই তো মেরে কো ছোড় কে চলা জায়েগা হ্যাঁ মুঝে উনকি কুছ সেবা করনে দো। তো সচি মাতা রোজ উহাঁ পে ব্যঞ্জন বনাতি হে সারে ভক্তো কে লিয়ে বনাতি হে। তো চৈতন্য মহাপ্রভু বহুত হি উনকা প্রসাদ কো গ্রহণ করতে হে আর বহুত হি আচ্ছে ঢং সে কীর্তন নৃত্য হোতা হে আর উহাঁ পে মাতা সচি যো হে
तुष्ट हो जाती है। ये चैतन्य चरितमृत में इस प्रकार से वर्णन है, चैतन्य भागवतम में कुछ और वर्णन है, वहां तो जो और ही भी बहुत ही वर्णन बहुत वहां पे जो है वर्णन किया गया। यहां तो इतना वर्णन है कि सच्ची माता तुष्ट होती है, उतना भी तुष्ट नहीं होती, फिर भी अब बेटा तो संन्यास ले लिया, क्या करे। फिर सच्ची माता कहती है, बेटा अगर तुम्हारा कोई तुम्हारा खुशी में ही मेरा खुशी है, अगर तुम संन्यास लेकर अगर मैं तुम्हें कहूं कि घर आ जाओ, अगर घर आ जाओगे तो लोग तुम्हारा निंदा करेंगे, तो उससे बड़ा मुझे बड़ा दुख होगा, तो इससे अच्छा जहां भी रहना वहां रहो, लेकिन ये करो कि आप यहां पास में जगन्नाथपुरी है, यहां पे तुम रहो, क्योंकि पास में यहां पर क्या है गंगा स्नान करने के लिए जगन्नाथपुरी से लोग आते हैं, तो तुम्हारा वार्तालाप मुझे मिलते रहेगी, तो बस मैं ये चाहती हूं। तो इसका चैतन्य महाप्रभु पहली बार ही अद्वैत भवन से फिर जो है खीरचोरा गोपीनाथ बालेश्वर फिर साक्षी गोपाल कटक भुवनेश्वर होते हुए वो फिर जगन्नाथपुरी दंडभंगा पहुंचते हैं, दंडभंगा गोपीनाथ फिर वहां से फिर पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु की यही लीला है। तो चैतन्य महाप्रभु अभी जो है साक्षी गोपाल पहुंचे और साक्षी गोपाल की कथा को यहाँ नित्यानंद प्रभु सुना रहे हैं। हरे कृष्ण। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सुना, और तो कुछ भी बोलने में त्रुटि हुई हो कुछ है उसके लिए मैं जरूर क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरा अभ्यास नहीं है देने का, तो पहली बार यहाँ पे दे रहा हूँ, तो इसलिए प्रार्थना है कि क्षमा करें, आशीर्वाद दें कि हम लोग ठीक ढंग से भगवान की कथा कीर्तन को कर सके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत की, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, श्री साक्षी गोपाल जी की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्ण।